بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق الله مولانا العظيم قرآن کے اندر چھوٹی چھوٹی آیت بھی ہے اور بڑی بڑی آیت بھی ہے. جیسے چھوٹی سی آیت ہے نون، یہ چھوٹی سی آیت ہے قرآن کی. الف لام میم چھوٹی آیت، طہٰ چھوٹی آیت. یہ چھوٹی چھوٹی آیت قرآن کی، نون، طہٰ، الف لام میم. قرآن میں سب سے بڑی لمبی آیت وہ سورۃ البقرہ میں ہے. سورۃ البقرہ میننگ الحمد کے بعد جو دوسرے نمبر کی سورت ہم پڑھتے ہیں، الف لام میم، اس سورت کو کہتے ہیں سورۃ البقرہ. اور بقرہ میننگ عربی کے اندر گائے اور بڑد، بیل، اس کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں. تو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کا، ایک بیل کا، بڑد کا قصہ بیان کیا، اس لیے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے. اس سورت کے اندر یہ جو آیت ہے یہ قرآن کی سب سے لمبی، سب سے بڑی آیت ہے. اور اس آیت کا نام ہے آیت المداینہ، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى. قرآن کی جو سب سے لمبی آیت ہے اس کا ٹاپک ہے معاملات، یعنی ویوار، یعنی لیوڑ دیوڑ، جس کو ہم گجراتی کہتے ہیں لیوڑ دیوڑ، لینا دینا، معاملات. اس کے اوپر قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے. اس سے سوچو کہ اللہ تعالی کی نظر میں اسلامک لا اور قاعدے کے مطابق ویپار کرنا، دھندا کرنا، بزنس کرنا، لیوڑ دیوڑ کرنا، لیز اور بھاڑے کے قرار کرنا، ادھار دینا لینا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ قرآن کی سب سے لمبی آیت یہ اسی کے لیے اللہ نے اتاری ہے. اس آیت کا پہلا سبق یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی ڈیل کرو، کسی کے ساتھ کوئی بھی ویوہار کرو، لینا دینا کرو، تو اس کو لکھ کر کے رائٹنگ میں کرنا چاہیے. یہ پہلی چیز اللہ نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے اندر لکھنا، واچنا، ریڈنگ، رائٹنگ کرنے والے لوگ بہت کم تھے، بہت کم لوگ. پورے مکہ کے شہر کے اندر ڈھونڈنے نکلو تو 15-17 آدمی کو رائٹنگ میں ریڈنگ آتا تھا پورے مکہ کے اندر. اس زمانے میں لکھنا واچنا پڑھنا آتا ہی نہیں تھا لوگوں کو. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا پہلا یہ کہ کوئی بھی ڈیل کرو, کوئی بھی معاملہ کرو تو رائٹنگ میں کرو, لکھ کر کے کرو. آج کیا ہوتا ہے, دو آدمی میں دوستی ہے, دو آدمی میں رشتے داری ہے, سگائی ہے, اب کچھ لیں گے دیں گے تو منہ زبانی بات کی, موڑے موڑے بات کی اور پیسے دے دیے, پیسے لے لیے, دل کر لی, دھندا کر لیا, لکھتے وکھتے کچھ نہیں. کیا کہتے ہیں, یہ تو میرا دوست ہے, یہ تو میرا سگا سبندھی ہے, اس میں کیا ہے سب لکھنے کے چکر میں. ہم دونوں کو ایک دوسرے پہ بھروسہ ہے, ہم ایک دوسرے کو مانتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں, نے ڈیل کر ڈالتے. یہ صحیح کام نہیں ہوا, یہ ٹھیک کام نہیں ہوا. دوست ہو, سگا ہو, رشتے دار ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی لیوڑ دیوڑ معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لکھ کر کے کرو, موڑے موڑے مت کرو. اب دنیا میں آپ لوگ زیادہ رہتے ہو, ہمارے پاس تو دنیا کے جھگڑے آتے ہیں فتوے کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کاروبار کے لیوڑ دیوڑ کے جھگڑے آتے ہیں اس میں 75% 75% ایسے جھگڑے آتے ہیں کہ لکھا نہیں تھا اس لیے جھگڑا کھڑا ہوا. پہلے دوستی میں, محبت میں, تعلق میں, سگائی میں سب چلتا ہے, پھر تھوڑے دن میں یہ بادام بھی نہیں کھاتا, وہ بھی نہیں کھاتا, اب بھول گئے دونوں کیا بات ہوئی تھی. اور بعض لوگ جان بوجھ کے بھول جاتے ہیں, بعض حقیقت میں بھول جاتے ہیں, بعض جان بوجھ کے بھول جاتے ہیں. اپنی فیور کا ہوئے تو یاد رہے اور اپنے نقصان کا ہوئے تو یاد نہیں رہے, نہیں پھر بھول جاوے تو دونوں میں لڑائی جھگڑا, مارا ماری, بولا چالی, کورٹ کچہری, پولیس, کیس, یہ سب چالو ہو جاتا ہے. اس لیے یہ دین کی بات آپ کو سنا رہا ہوں, بہت بڑی دین کی بات, کہ اللہ کا حکم ہے کوئی بھی معاملہ کرو, ویوہار کرو, ڈیل کرو, لیوڑ دیوڑ کرو تو لکھ کر کے کرو. لکھ کر کے دونوں کو سائن کر دینے کی, تاریخ لکھ دینے کی. اب دونوں چین سے, ایک کاپی اس کے پاس, ایک کاپی اس کے پاس. کبھی بھی جھگڑا ہوگا, بھائی ہوں لکھیلو چھ واچو نہیں, جھگڑا ختم, اندر لکھا ہے وہ واچو اور جھگڑا ختم. اب لکھا نہیں ہوگا تو وہ کہے گا کہ $5,000 دیے تھے, دوسرا کہے گا کہ ایک منڈو آخو وداری دی دو 500 جوتا, ایک زیرو تو وداری دی دو, یہ جھگڑا چالو ہو گیا. کیوں لکھا نہیں تھا, اس وجہ سے. اس لیے یہ دین کی بات سنا رہا ہوں, قرآن کی بات سنا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه. یا کچھ نہ کچھ تو حافظ ہوں گے نا, کوئی حافظ ہے یہاں پر, سمجھ رہے ہو نا کہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, کوئی عربی بات نہیں بول رہا ہوں خالی خالی, قرآن کی آیت بول رہا ہوں اور قرآن کی آیت کا میننگ اور ترجمہ سنا رہا ہوں, مطلب سنا رہا ہوں. تو ایک بات آج کے بعد ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی کے ساتھ چھوٹا ویوہار کرو کہ بڑا کرو, چھوٹا معاملہ کرو کہ بڑا معاملہ کرو, لیکن لکھنے کی عادت بناؤ. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں. ये करोगे तो इंशाल्लाह कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दूसरी चीज समझो, इस आयत में अल्लाह ने क्या मसला बताया, इला अजलिम मुसम्मा, टाइम लिमिट नक्की होनी चाहिए। जैसे तुमने किसी को भाड़े पे घर दिया तो टाइम नक्की करो, एक वर्ष, दो वर्ष, छह महीने। किसी को तुमने इन्वेस्ट के लिए पैसे दिए, टाइम नक्की करो, एक बरस, दो बरस, तीन बरस। किसी को तुमने जो है भाड़े के ऊपर गाड़ी दी तो टाइम नक्की करो। किसी को उधार पैसे दिए, कर्ज के पैसे दिए, टाइम नक्की करो। ये टाइम नक्की करना भी जरूरी है, ये अल्लाह का हुक्म है। इला अजलिम मुसम्मा। अब सुनो, एक हदीस सुनाओ, ऐसा भी सवाब होता है। सवाब की ये भी एक शक्ल है। देखो, कोई आदमी आपके पास उधार पैसे लेने आया, कर्ज के पैसे लेने आया, तो अल्लाह के नेक बंदे यूं कहते हैं, औलिया अल्लाह, कि किसी को कितना कर्ज देने का, कितने पैसे उधार देने के। एक बात याद रखोगे तो कभी पछताओगे नहीं। अगर वो पैसे नहीं देवे तो आपको तकलीफ नहीं होवे, इतने ही पैसे उधार दो, इतने पैसे उधार दो कि वो वापिस नहीं देवे, खा गया, हड़प कर गया, हजम कर गया, तो आपको कोई टेंशन ना आवे, इतने ही पैसे कर्ज में दो। और जब कर्ज के अंदर दो तो टाइम लिमिट कितने महीने। अब देखो सवाब कितना बड़ा। एक आदमी आपके पास $1000 कर्ज लेने आया, आपने उसको कहा कि देख आज 28वां रोजा है, मैं तुझको $1000 कर्ज देता हूं, टाइम कितना, एक बरस, आइंदा साल 28 रमजान को मुझे $1000 रिटर्न कर देना। टाइम लिमिट हो गए, लिख लिया, किसी को साक्षी गवाह बनाया, विटनेस बना दिया, हो गई बात। अब सुनो कितना बड़ा सवाब मिलेगा। आज 28 रमजान को $1000 कर्ज दिए तो आज से रोजाना डेली $1000 अल्लाह के रास्ते में सदका करने का सवाब मिलता है। ये हदीस है कि जिस दिन आपने किसी को कर्ज दिया, उधार दिया और टाइम लिमिट नक्की करके दिया, तो रोजाना इतने पैसे अल्लाह के नाम पर सदका करने का सवाब मिलता है। और आपके पैसे तो खड़े अपनी जगह पर लेने के, लेकिन रोज $1000 के सदके का सवाब। अब आइंदा रमजान आ गई, 28वां चांद आ गया, तो उसने तो 27 की बड़ी रात में जो आपकी मुलाकात कर ली और आके क्या कहता है, भाई कल 28 रमजान है, वायदा अपना है, लेकिन अभी देवावे ऐसी पोजीशन नहीं है, जरा दो महीने लंबे कर दे, नहीं बकरी पर मैं पक्का दे दूंगा तेरे $1000। 28 रमजान का वादा है, लेकिन बकरी के दिन कुर्बानी करके पाटिया बाद में खाऊंगा, पहले $1000 देने आऊंगा। दो महीने जरा टाइम लिमिट बढ़ा दे, शव्वाल रमजान, शव्वाल जिलकत दो महीने, जिल हज के 10 दिन। तो आपको गरीब पर रहम आ गए, आपने कहा ठीक है, चलो मैंने दो महीने तुम्हारे टाइम बढ़ा दिए, ज्यादा कर दिए, तो अब सुनो अब क्या सवाब मिलेगा। आपने 28 रमजान से टाइम ज्यादा कर दिया तो अब रोजाना $2000 सदका करने का सवाब मिलेगा। जिस दिन आपने कर्ज वाले को टाइम ज्यादा दिया, उस दिन से डबल पैसे अल्लाह के नाम पर सदका करने का सवाब मिलेगा। तो देखो, कर्ज देना बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन टाइम नक्की करके दो, लिख करके दो और जो है गवाह बना करके दो, ये तरतीब शरीयत ने बताई। और इतना बड़ा सवाब, किसी को कर्ज दोगे तो इतनी रकम डेली सदका करने का सवाब, और जिस दिन टाइम ज्यादा करो उस दिन डबल रकम सदका करने का सवाब अल्लाह ताला अता करते हैं, इतनी बड़ी नेकी है। लेकिन ये याद रखने का जो अल्लाह ने फरमाया, लिखान करो, लिख करके दो, टाइम लिमिट नक्की करके दो, वरना क्या होगा, टाइम नक्की नहीं करोगे और आपने किसी को एक बिलियन डॉलर कर्ज दे दिए, अब वो क्या समझता है लेने वाला कि अपाई प्यारे आप पर, लेने वाला यही समझता है और देने वाला ये समझता है कि एक महीने में लेने का है, इसीलिए एक महीने के बाद वो उगराणी में जाएगा, लाओ तो कह रहे काले तो लाए हो ना, अभी तो मांगो अभी आओ है तेरे दे रहा हूं। बस ये झगड़ा शुरू। ये झगड़ा क्यों हुआ, आपने टाइम लिमिट नहीं नक्की की थी, आपने राइटिंग में लिया नहीं था, आपने किसी को विटनेस और गवाह नहीं बनाया था, इसलिए ये झगड़ा शुरू हो गया। इसीलिए अल्लाह ताला ने कितनी अच्छी गाइडलाइन दी, इज़ा तदायन्तुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा फ़क्तुबू, लिखने की आदत बनाओ। और उसमें एक चीज होती है, गुजराती में गिरवे रखना कहते हैं और अरबी में रहन कहते हैं, उर्दू में गिरो कहते हैं। ये क्या चीज होती है, ये भी इसी आयत में अल्लाह ताला आगे बयान करते हैं, मैं तुम्हारे पास कर्ज मांगने आया, अल्लाह मेरी हिफाजत करे, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि भाई $1,000 कर्ज दो, तो तुमने क्या कहा, कर्ज तो दूंगा लेकिन कुछ मेरे पास चीज लाके दो, वो मेरे पास रहेगी तुम्हारी। तो आपने क्या कहा कि मेरी बीवी के पास हाथ में सोने की चूड़ी है, कावड़ी, वो मैं तुम्हारे पास गिरवे रख देता हूं, इसको रहन कहते हैं, कि मैं एक बरस के बाद तुम्हारे पैसे वापस दूंगा तो मेरी चूड़ी वापस ले जाऊंगा। गोल्ड रख दिया, सिल्वर रख दिया, गाड़ी रख दी, मकान के डॉक्यूमेंट गिरवे में रख दिए, जगह के पेपर्स गिरवे में रख दिए, इसको रहन रखना कहते हैं। और ये भी शरीयत की नजर के अंदर जरूरी है, फरिहानुम मकबूदा, आगे इसी आयत में है कि अगर तुम्हारे पास कोई लिखने वाला नहीं मिले और आप लिखना नहीं चाहते हो तो फिर कम से कम गिरवे ले लो ताकि कल झगड़ा खड़ा नहीं होवे। तो ये गिरवे लेकर के कर्जा देना, ये भी हमारी शरीयत के अंदर साबित चीज है और दीन के अंदर मौजूद है। गर्ज ये कि कोई भी डील करो, कोई भी मामला करो, लिख करके करो, गवाह बना करके करो, टाइम लिमिट के साथ करो, ये भी अल्लाह ताला का हुक्म है, दीन का कानून है। आज हम मुसलमान व्यवहार में, लेवड़ देवड़ में, व्यापार में, तिजारत में दीन का ध्यान ही नहीं रखते, दीन की तरफ ध्यान ही नहीं रखते, बस कमाना है पैसे, कमाना है पैसे। ये गलत आदत है। हलाल रोजी कमाओ, हलाल तरीके से कमाओ, उसके अंदर हराम को मिक्स मत होने दो, तो अल्लाह ताला के यहाँ हमारी इबादत, दुआ, नमाज वगैरह कबूल होगा। आज मुसलमान बेधड़क लोन लेते हैं, मुझे पूछने आते लोग वहां भी, इंडिया में भी बहुत आते हैं कि नवी गाड़ी लेने की है तो बैंक से लोन ले लूं। तो मैं कहता हूं उनको कि भाई नवी गाड़ी लेना शरीयत में कोई फर्ज तो है नहीं, तुम सेकंड हैंड गाड़ी भी तो वापस सकते हो, तुम्हारे पास कैश पैसे है, सेकंड हैंड गाड़ी ले लो, लोन लेने की क्या जरूरत, कोई नई गाड़ी फर्ज है लेना, सेकंड हैंड इस्तेमाल करो, लेकिन लोन के चक्कर में क्यों पड़ते हो? बैंक की लोन, इंटरेस्ट वाली लोन, फिर उसके अंदर मदद करना, हेल्प करना, ये सब गुनाह का काम है। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ब्याज इंटरेस्ट उसके अंदर मदद करना, लिखना, ये भी सब गुनाह में आता है, ये भी बड़ा गुनाह का काम है। इसीलिए मुसलमानों को इस तरह हराम इंटरेस्ट, हराम लोन से अपने आप को बचाना चाहिए। कुरान में कितने डेंजर अल्फाज है, आप डर जाओगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम लोग ये ब्याज को नहीं छोड़ोगे, फ़इल्लम तफ़अलु फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिह, जो लोग ब्याज को छोड़ते नहीं है उनके लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से लड़ाई का ऐलान है। अल्लाह और रसूल की तरफ से लड़ाई, अब किसी में हिम्मत है अल्लाह से लड़ने की, अल्लाह के रसूल से लड़ने की? जो लोग भी ब्याज में पड़ते हैं वो लोगों के लिए अल्लाह रसूल की तरफ से लड़ाई का ऐलान है। इसीलिए मुसलमान को ऐसे चक्कर से अपने आप को बचाना चाहिए। बड़ी खतरनाक चीज, बड़ी नापाक चीज, बड़ी गंदी चीज। और मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह ताला हिफाजत में रखे, आफियत में रखे। मैंने बड़े बड़े लोन और ब्याज में पड़ने वालों को देखा कि उनके यहाँ कभी न कभी बर्बादी आती है, कभी न कभी वो बर्बाद होते हैं, दुनिया में भी बर्बाद होते हैं और फैमिली लाइफ में सुकून चैन खत्म हो जाता है। अजाब आता है अल्लाह ताला दिया, कभी न कभी आता है। इसलिए हलाल के पैसे थोड़े होए, देर लगे, लेकिन हलाल में जाओ, ये लोन ब्याज के चक्कर में मत जाओ। बड़ी खतरनाक, गंदी, नापाक चीज है। अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बन के आए तो मक्का में और अरब में ब्याज का बहुत रिवाज था। यहाँ तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा है, चचा अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर के एक चाचा की उम्र ही बहुत लंबी हुई, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो हुजूर के इंतकाल के वक्त भी जिंदा थे, बड़ी उम्र हुई चचा अब्बास की। तो चचा अब्बास के पैसे ब्याज पे चलते थे लोगों के पास। तो जब अल्लाह के यहाँ से कानून आया कि ये ब्याज और इंटरेस्ट हराम है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि हज के खुतबे में पूरे मजमे के बीच में ऐलान कर दिया कि मेरे चाचा ने जिन जिन लोगों को ब्याज पर पैसे दिए हैं वो असल कर्ज दे जाना, ऊपर का ब्याज कोई भी देने मत आना। हुजूर ने ऐलान कर दिया के मजमे के बीच में। कितनी बड़ी हिम्मत, आज के हिसाब से बिलियनर, बिलियन ट्रिलियन रकम चचा अब्बास की ब्याज पर चलती थी। लेकिन जब अल्लाह के यहां से कानून आया तो खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मजमे में, भरे मजमे में ऐलान कर दिया कि मेरे चाचा के पास जिसने भी उधार लिया है, कर्ज लिया है, वो जितने पैसे कर्ज के वो ही देने आना, कोई भी ब्याज की एक रकम भी मेरे चाचा को देने नहीं आवे, ये ऐलान कर दिया। कितनी बड़ी हिम्मत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। बस ये एक मुसलमान का जज्बा होना चाहिए, हलाल कमाओ, चाहे थोड़ा कमाओ, उसमें अल्लाह बरकत देंगे, सुकून चैन देंगे और धीरे धीरे तरक्की अता करेंगे। मैं आपको एक दुआ सिखाता हूँ, ये दुआ यकीन के साथ पढ़ो तो पहाड़ जितना कर्ज भी होगा अल्लाह अदा करवा देंगे। बस हलाल पे चलना, पहाड़ जितना कर्ज होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया جو مسلمان یہ دعا مانگے گا اللہ پہاڑ جتنا بڑا قرض بھی ادا کروا دیں گے. بس حلال چاہیے, حرام کا نہیں. چھوٹی سی دعا ہے, میں بھی ہر نماز بعد پڑھتا ہوں, آپ بھی ہر نماز بعد پڑھو. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک عن من سواک. دیکھو کتنی چھوٹی سی دعا ہے, یاد کرو یاد ہو جائے گی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک عن من سواک. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللہ تعالی ہم سب کو ریاج اور ریاجو لون کے چکروں سے بچنے کی, توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حلال عزت والی برکت والی روزی عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.